الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عقائد عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم، ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھا روزانہ، وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ولایت ایک روحانی نظام ہے، ایک شعبہ ہے، یہ ایک روحانی انسٹیٹیوشن ہے جو اللہ عز و جل نے قائم فرمائی ہے، اور اس میدان میں جو خوش قسمت چنے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں ان کی بڑی شانیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، احادیث میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور مسلم امت کا تجربہ بھی ہے کہ ان کی شانیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو نظام دیے، ایک تو جسم کا نظام ہے اور ایک روح کا نظام ہے۔ The combination of روح and the body is human being، یعنی human being نہ تو صرف روح سے بن سکتا ہے نہ صرف جسم سے بن سکتا ہے۔ These are two separate entities, body and the soul. اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے ان کو کمبائن کر دیا، تو اس کا نام ہے انسان۔ لیکن یہ دو چیزیں جو کمبائن ہوئیں، یہ ہیں بڑی الگ الگ، ان کی ضرورتیں بھی الگ ہیں، ان کے تقاضے بھی الگ ہیں، ان کے وطن بھی الگ ہیں، جب موت واقع ہوگی تو ان کو پھر الگ الگ جگہ جانا بھی ہوگا۔ باڈی از میڈ فرام دا گراؤنڈ، مٹی، سوئل، جسم کی حقیقت یہی ہے۔ تو مٹی سے بنا ہے، تو جو اس کی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مٹی سے پوری کی، کیوں یہ اس جہان کا ہے۔ باڈی بلانگس ٹو دس ورلڈ، سو اٹ نیڈز آر آلسو فلفلڈ فرام دس ورلڈ۔ یو نیڈ فوڈ، ویئر دا فوڈ کمز فرام، زمین سے، چاول ہو، گندم ہو، مکئی ہو، سبزیاں ہوں، جانوروں کا گوشت ہے، وہ بھی اسی زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو سانس لینا ہے تو اسی زمین کے درخت آکسیجن چھوڑتے ہیں، تو آپ اس کو انہیل کرتے ہیں، اپنے اندر لیتے ہیں، تو اس کی ساری ضرورتیں یہیں سے پوری ہوتی ہیں۔ بٹ دا روح از ناٹ میڈ فرام دس ورلڈ، روح کو مٹی سے نہیں بنایا، تو روح کی ضرورتیں مٹی سے پوری نہیں ہوں گی۔ یو کین ناٹ فیڈ یور روح ود روٹی، ود رائس، ود میٹ، ود واٹر، آکسیجن، ये इनकी जरूरतें नहीं है, रूहों की जरूरतें नहीं है। तो लिहाजा हम जो इशाले शबाब करते हैं और खाने पकाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम रूह को खाना खिला रहे हैं, पुलाव खिला रहे हैं, जर्दा खिला रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि लोग खाएंगे और खाना खिलाना सवाब है, और सवाब बजाते खुद एक रूहानी चीज है, तो रूह को हम एक रूहानी चीज पेश करेंगे। रूह डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, रूह का जहान और है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, यस अलूना का अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ओ बिलवद, दे आर आस्किंग यू, पीपल आर क्वेश्चनिंग यू अबाउट रूह। रूह क्या चीज है? यहूदियों ने यह सवाल किया था, ये रूह क्या चीज है? तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, कुल, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए, अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब के अमर से है। एंड व्हाट इज दिस अम्र? अम्र इज ए नेम ऑफ अनदर वर्ल्ड, एज दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड आलम खल्क, देयर इज अनदर वर्ल्ड विच इज कॉल्ड आलम अम्र। तो आलम खल्क में क्या होता है, ये जो ये जिस जहान में हम रहते हैं इसमें क्या होता है? इसमें कोई चीज बनाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल होता है। इंसान किससे बनाया? मिट्टी से। ये मस्जिद किससे बनाई? ईंटों से, सीमेंट से, सरिये से, लोहे से। मेज कैसे बनाई? लकड़ी से। तो ये जहान है। इस जहान में चीजें ऐसे नहीं बनती, ये खल्क का जहान है। इसमें सबब की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने इसमें इसको आलम असबाब बनाया है, कॉज एंड इफेक्ट। कोई सबब बनेगा तो उसका असर जाहिर होगा। बट देयर इज अनदर वर्ल्ड इन विच नो मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक एनीथिंग। वो जहान है कि जिसमें कुछ बनाने के लिए कुछ चाहिए नहीं, यानी वहां सबब की हाजत नहीं है, क्योंकि वो जहान अलग है। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, कुद, हो जा, फयकून, तो वो हो जाती है। अब इस हो जाने में ना मिट्टी चाहिए, ना गारा चाहिए, ना हवा चाहिए, ना आग चाहिए, ना धूप चाहिए, ना लकड़ी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दुनिया में जो चीजें बनेंगी उसके लिए कुछ चाहिए होगा, कि ये जहान ही आलम खल्क है, यहां का निजाम सबब पर मौकूफ है, और वो जो जहान है उसमें किसी सबब की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलता है। कुन फयकून, हो जा, हो गई। तो ये जो रूह है, सवाल ये पैदा होता है कि जिस्म को तो मिट्टी से बनाया, तो रूह को किस चीज से बनाया? तो उसका जवाब ये है कि रूह को किसी चीज से नहीं बनाया, क्योंकि रूह उस जहान की है कि जहां पर चीजों को किसी चीज से बनाया नहीं जाता, बल्कि चीजें सिर्फ अल्लाह के हुक्म से बनती। सो इट बिलोंग्स टू अनदर वर्ल्ड। तो जब इसका ताल्लुक ही दूसरे जहान से है, तो इसकी जरूरतें इस जहान से कैसे पूरी होंगी? इसको रोटी नहीं चाहिए, इसको चावल नहीं चाहिए, इसको पानी नहीं चाहिए, इसको फ्रूट सब्जियां कुछ नहीं चाहिए, इसको ऑक्सीजन की हाजत नहीं है, कि ये इस जहान की नहीं है, ये है ही दूसरे जहान की। तो जब ये दूसरे जहान की चीज है, तो क्या इसकी कोई जरूरतें भी हैं कि नहीं है? लाइक द बॉडी हैज इट्स नीड्स, डू द सोल ऑल्सो हैव इट्स नीड्स? द आंसर इज यस। जैसे जिस्म की जरूरतें हैं वैसे रूह की भी जरूरतें हैं। तो जैसे जिस्म की जरूरतें इस जहान से पूरी होती हैं, वैसे ही रूह की जरूरतें उस जहान से पूरी होती हैं जिस जहान से रूह का ताल्लुक है। उसके खाने पीने भी वहीं से आते हैं। देखो अल्लाह सुभान व तआला सेज इन कुरान करीम, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बी अवे, खबरदार, जान लो, समझ लो, द हार्ट गेट सेटिस्फेक्शन विद द जिक्र ऑफ अल्लाह। हार्ट से यहां फिजिकल हार्ट मुराद नहीं है, जो जो ब्लड को पंप करता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन देता है, यहां हार्ट से वो मुराद नहीं है, बल्कि हार्ट से रूह मुराद है। कभी कभी कल्ब बोल के रूह मुराद ली जाती है, क्योंकि ये तो एक ऑर्गन है, ये तो एक जिस्म का हिस्सा है, लाइक योर हैंड, लाइक योर ईयर्स। तो असल जो चीज दिल बोलकर मुराद ली जाती है ना, वो रूह होती है, क्योंकि दिल रूह के रहने की जगह है। तो मकान का नाम लेकर मकीन मुराद ले लिया है, जगह का नाम लेकर जो उस जगह में रहता है वो मुराद ले लिया। तो ये जुबानों के ये कायदे होते हैं। तो यहां वो जो दिल, जो फिजिकल दिल है ना, वो मुराद नहीं है, बल्कि रूह मुराद है। तो माना क्या हुआ कि खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान पहुंचता है। अब ये इत्मीनान पहुंचने का क्या मकसद है? अगर इत्मीनान नहीं है तो कौन सी हालत होगी? इत्मीनान के अपोजिट क्या हालत है? सेटिस्फेक्शन इज अगेंस्ट डिससेटिस्फेक्शन। गैर इत्मीनानी वाली हालत, इज़्तिराब वाली हालत, परेशानी वाली हालत, तो ये कब होती है? कभी आपको भूख लगी है? यकीनन लगी होगी, आए दिन तजर्बा होता है। काम काज वाले, ट्रेवलिंग करने वाले, इनको तो इसका बहुत तजर्बा होता है। कहीं काम में फंस गए, देर सवेर हो गई, तो भूख ने हमला कर दिया। अब जब भूख हमला करती है ना, तो इंसान बेचैन हो जाता है। अब भूखे आदमी से आप सलाम दुआ भी करोगे ना, तो ऐसे लगेगा कि लड़ रहा है आपसे, तो इसको भूख लगी है, इसको छोड़ दो, तो गले पड़ जाएगा किसी। गैर मुतमैन है ना, एंग्री है। तो जब भूख लगती है तो इंसान की कैफियत गैर मुतमाइन होती है, और जैसे ही आप उसको खाना खिला दो, ये भूखा जो हर एक से लड़ता था, इसको आप खाना खिला दो, अब ये बड़ा फ्रेंडली हो जाता है, अब ये बड़ा अच्छा हो जाता है, अब टेंशन फ्री हो गया। तो ये हालत रूह की भी है कि जब रूह भूखी पड़ जाए तो गैर मुतमाइन है, यहां वहां ठोकरें खाती है। ये जो रूहें आपको क्लबों में नजर आती हैं, गुनाहों के अड्डों पर नजर आती हैं, ये वो बेचैन रूहें हैं कि जिनको इनकी गिजा नहीं मिली, ये गैर मुतमाइन हैं, ये बुरे कामों पर तुल गई हैं। और जिस दिन आप इस रूह को इसका खाना दे दोगे, इसकी भूख मिटा दोगे और वो अल्लाह का जिक्र है, तो इनको इत्मीनान हो जाएगा। जब इनको इत्मीनान हो जाएगा तो फिर ये रूहें सही काम करेंगी, गलत काम नहीं करेंगी। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तो ये अल्लाह का जिक्र, ये भी उसी जहान की चीज है जिस जहान से रूह आई है, क्योंकि ये एक रूहानी मामला है अल्लाह का जिक्र। ये एक सवाब है, आपको क्या पता उससे क्या मिला आपको। तो अनसीन थी, आपने तो बोल दिया अल्फाज, अल्लाह 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 कर दिया, मुंह से भी अल्लाह का जिक्र होता है, जब नमाज पढ़ते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र होता है, और जब आप दीन के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, मीटिंगें अटेंड करते हैं, कुड़न दिल में लाते हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र है। तो सिर्फ बाज लोगों ने समझ लिया कि जुमेरात को जाएंगे और एक ग्रुप के साथ बैठकर हम गला फाड़ फाड़ के अल्लाह 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 करेंगे या ला इला अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे। और बाज लोग तो ऐसे हैं कि उनको बयान सुना दिया जाए तो गुस्से हो जाते हैं। अगर हम बयान सुनने नहीं आया, वो जिक्र करते हैं ना, तो वो स्ट्रेस रिलीफ हो जाती है। तो वो स्ट्रेस रिलीफ की टेबलेट समझ के जिक्र करते हैं लोग। अगर डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको स्ट्रेस रिलीफ की कोई कैप्सूल को टेबलेट दे देगा, अगर यही आपका मकसद है अल्लाह के जिक्र से। तो बयान शुरू करो, वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि बयान में दीन सिखाया जाता है, जिसका सवाब जिक्रुल्लाह से ज्यादा है। आप 24 घंटे जिक्रुल्लाह करो, इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब एक लम्हा भर इल्म दीन सीखने से मिलेगा। वैसे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं लोग, आखिरत के सौदे नहीं आते लोगों को कि फायदा किस में ज्यादा है, नफा किस में ज्यादा है, मुनाफा किस में ज्यादा है, तो नहीं आते। तो उलमा के पास बैठ के उनसे सीख लो, ताकि सही फैसले करो, अच्छे फैसले करो, वो काम करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा, अब जब इंसान मरता है तो क्या होता है? ये जो बॉडी है ना, ये उधार है, ये रूह जो है ना, ये नकद है। या यूं कह लें, बॉडी आरजी है, रूह असल है। इंसान तो जो अल्लाह ताला ने बनाने थे, उनकी रूहें पैदा कर दी, वो तो ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जिस दिन बंदा पैदा हुआ, उस दिन उसकी रूह की तखलीक नहीं हुई है। द सोल वॉज ऑलरेडी देयर। असल में उसी सोल को अल्लाह ताला ने जिस्म का एक लिबास पहनाया, कि जिस्म का लिबास नहीं पहनेगी तो विजिबल नहीं होगी, फंक्शनल नहीं होगी। और अब ये सिरायत कर गई जिस्म के जर्रे जर्रे में, जैसे आग सिरायत करती है जलते हुए कोयले में। तो अब उसके बारे में आप यही कहेंगे कि यहां भी आग है, यहां भी आग है, यहां भी आग है। अगर कोयला जल रहा है सारे का सारा, तो आग तो हर हिस्से में होगी। तो जब रूह है इंसान के अंदर, तो रूह हर हिस्से में। तो मौत आती है तो क्या होता है? मौत का मतलब यह है कि रूह को जिस्म से निकाल लिया गया। तो आपकी कोई गाड़ी हो ना, आप उसमें से इंजन निकाल लें, अब कहेंगे भाई गाड़ी चलाओ, गाड़ी तो रुक गई, अब ये नहीं चलने वाली। अब ये तब चलेगी जब इसमें दोबारा इंजन पड़ेगा। तो ये रूह इसका इंजन है। जब इंजन को, रूह को जिस्म से जुदा कर लिया गया, तो जिस्म की गाड़ी रुक गई। और जब कयामत के रोज अल्लाह ताला इस इंजन को फिर डाल देगा, तो फिर ये गाड़ी चलने लग जाएगी। मिसालों से समझा रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। सो द डेथ इज द नेम of separation of soul from the body। तो अगर सवाल किया जाए कि मरा कौन है, आप तो कहते हैं ना डेथ हो गई, जब भाई रूह निकल गई जिस्म के अंदर, ऐलान हो गया, एक दूसरे को मैसेजेस जा रहे हैं, किस बात के? डेथ हो गई, यानी कोई मर गया। तो अगर मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं, और मैं आपसे एक सिंपल सवाल करूं कि रूह जो जिस्म से जुदा हुई है, असल में मरा कौन है? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, असल में मरा कौन है? भाई गाड़ी से इंजन निकाल लिया, तो असल मौत किस चीज की है? इंजन लेस गाड़ी की। क्या वो बेकार हो गई? पहले कार थी, अब वो बेकार है। जो नहीं चलती तो उसको कार थोड़ी कहेंगे। तो डेथ जिस्म की हुई है, रूह की नहीं हुई है, सही है? डेथ किसकी हुई है? तो जिसकी डेथ हुई है, असर उस पर पड़ेगा जिसकी डेथ नहीं हुई, उस पर असर नहीं पड़ेगा। जिसकी डेथ हुई है उसकी सिफतें खत्म हो जाएंगी, जिसकी डेथ नहीं हुई है उसकी सिफतें नहीं खत्म होंगी। उठना बैठना चलना मूवमेंट जिस्म के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन पल्स का चलना, ब्रीदिंग सांस लेना, हवा का अंदर जाना बाहर निकालना, ये सारे वो निशानात हैं जो ये बताते हैं कि बॉडी इज अलाइव, जिस्म जिंदा है। लेकिन जब जिस्म पर मौत हो गई तो इसकी ये सारी सिफतें भी मर गईं, ठीक है ना। मरने के बाद क्या आदमी चलता नजर आता है, जब उसको गुस्ल दे रहा होता है कोई, क्या वो अपनी मर्जी से इधर उधर टर्न करता है? क्या गुस्ल देने वाले से कहता है जरा आहिस्ता से हाथ रगड़ो मेरे जिस्म पर, तकलीफ हो रही है? क्या उसका कोई चॉइस है, उसका कोई बोलना है, उसकी कोई हरकत है, उसकी कोई समाअत है? जहरन कुछ भी नहीं है ना, सारी सिफतें मर गई। क्यों मर गई? कि जिस्म खुद मर गया। तो जो मर गया उसकी सिफतें मर गई, और जो नहीं मरा उसकी सिफतें नहीं मरी। बॉडी मर गई, रूह नहीं मरा। तो जब रूह नहीं मरा तो इसका मतलब यह है कि रूह की सिफतें भी जिंदा है। अब मैं आपको बताता हूं कि रूह की सिफतें कौन कौन सी हैं। रिसालत ये जिस्म की सिफत नहीं है, ये रूह की सिफत है। नबूवत रूह की सिफत है। विलायत रूह की सिफत है। सिद्दीकियत रूह की सिफत है। शहादत रूह की सिफत है। विलायत और सालहियत रूह की सिफत है। बल्कि ईमान भी रूह की सिफत है। तो रूह मरी नहीं, लिहाजा रूह की सिफतें भी नहीं मरी। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि रिसालत तो जिंदा हो और रसूल मर गया हो, नबुव्वत तो जिंदा हो और नबी मर चुका हो, सिद्दीकियत तो जिंदा हो और सिद्दीक ना रहा हो, शहादत तो जिंदा हो लेकिन शहीद मर चुका हो? इसको तो अकल भी कबूल नहीं करता। इसलिए कि रिसालत रसूल से लगी हुई है, नबुव्वत नबी से लगी हुई है, सिद्दीकियत सिद्दीक से लगी हुई है, शहादत का कयाम शहीद की वजह से है, विलायत का खड़ा होना वली की वजह से है। लिहाजा ये जो तसव्वुर है इस्लाम का, इसको समझने के बाद हमें रूहानी निजाम समझ में आ जाएगा कि हर रसूल जिंदा है, हर नबी जिंदा है, हर सिद्दीक जिंदा है, हर शहीद जिंदा है, हर वली जिंदा है। क्योंकि विलायत और रिसालत और नबूवत उसकी सिफतें नहीं है जो मर चुका है और वो जिस्म है। ये तो सिफतें ही रूह की है जो जिंदा है। और फिर एक लम्हे के लिए अल्लाह ताला का वादा पूरा होता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत। फिर अल्लाह ताला उनको जिंदगी वापस अता फरमा देता है, और वो जिंदगी हमको नजर नहीं आती। हमको नजर नहीं आती तो हम इनकार कर देते हैं, ये क्या बात हुई भाई? एक चराग जल रहा हो आपके कमरे के अंदर, उसने रोशन किया हो सब मामले को, पूरा कमरा जो है तो वो इल्यूमिनेट कर रहा है, इट्स शाइनिंग। आपने सोचा वो हमारा बड़ा सा पतीला है, देग है, वो लेकर हम उसके ऊपर उल्टा कर देते हैं। चराग जल रहा था, अच्छा खासा रोशनी दे रहा था, आपने क्या किया, पतीला उसके ऊपर डाल दिया उल्टा करके, अचानक अंधेरा हो गया, आपको रोशनी अब नजर नहीं आ रही। अब अगर मैं ये सवाल करूं कि वो चराग बुझ चुका है या जल रहा है? जल रहा है ना, पहले नजर आता था, अब क्यों नहीं नजर आता? अब पर्दा हो गया बीच में, आपकी आंखें और उस जलते हुए चराग में पर्दा हो गया। अब जब पर्दा पड़ गया और फिर कोई पूछे कि चराग है कि नहीं है, अकलमंद कहेगा चराग तो है, बेवकूफ कहेगा चराग नहीं है। तो मौत ने उन पर पर्दा डाला, अब हम उनको देख नहीं पाते। लेकिन चिराग वैसे ही जल रहा है जैसे पहले जल रहा था। अब ये कमजोरी हमारी आंखों की है कि हमारी आंखें उस पतीले की दीवार को तोड़कर वहां जलते हुए चिराग तक पहुंच नहीं पाती। अगर पहुंच जाती तो फिर वो आपके दिमाग को आकर वही मैसेज देती कि हाँ जल रहा है, क्योंकि देखने का सिस्टम यही है ना कि आपकी आंख किसी चीज पर पड़ती है, वहां से आपके ब्रेन को एक मैसेज आता है तो आपको नजर आता है। तो अब आपकी आंखें वहां जाके रुक गई, तो कमजोरी किसकी है? तो अपनी कमजोरी कबूल करो। ये क्यों कहते हो कि चिराग रहा ही नहीं? इफ यू आर अनएबल टू सी द शाइनिंग ऑफ द लैंप बिकॉज योर आईज आर नॉट सो सोफिस्टिकेटेड, दे कैन नॉट थे द वॉल्स ऑफ दैट पॉट एंड रीच द शाइनिंग लैंप एंड कम बैक एंड गिव मैसेज टू योर ब्रेन दैट द लैंप इज शाइनिंग, देन एक्सेप्ट योर ओन वीकनेस। अपनी कमजोरी कबूल करो, ये ना कहो कि चिराग रहा नहीं। भाई अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है ना कि शहीद जिंदा है, वलाकिल्ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी यूं चलती है कि जनाब वो चीजों पे नजर पड़ती है तो फिर आके वो पैगाम आता है तो हम उसको देखते हैं तो हम उसको मानते हैं, लेकिन वहां तो आपकी नजर वहां पड़ेगी नहीं। वो तो रूहानी निजाम है, रूहानी निजाम का सिस्टम ही और है, उसमें दूरी नजदीकी का तसव्वुर नहीं होता। उसमें ये नहीं होता कि बगदाद यहां से कितना दूर है। ये जो सवाल करते हैं ना, या गौस अल मदद क्यों कहते हो इतनी दूर से, अरे ये दूरियां जिस्म के लिए हैं, रूह के लिए नहीं है। वो निजाम और है, ये निजाम और है। हमारे जिस्मों के आगे रुकावटें हैं, बिल्डिंगें हैं, दूरियां हैं, पहाड़ हैं, हवाएं हैं। हमारे जिस्म इतनी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन रूह का निजाम कुछ इस तरह से है कि आप जब ख्वाब देखते हैं तो आपकी एक रूह जन्नत में पहुंची हुई होती है, और इधर कोई आपके पांव को हिलाता है तो वो जन्नत छोड़ के लम्हे भर में आपके जिस्म के अंदर फिर आ जाती है। हजूर सैयदना गौसे आजम, उन्होंने एक बात फरमाई है, उन्होंने फरमाया कि लाओ कशफत औरत मुरीदी बिल मशरिक व अना बिल मगरिब लसतरतुहा। He says, if my murid becomes naked, uska parda uth jaye, nanga ho jaye. He is in the east and I am sitting in the west, I will cover him from there. Main usko wahin se dhaam dunga. To jo duniya ke kisi hisse mein baithe hue मुरीद और अकीदत मन का पर्दा ढांप सकते हैं अल्लाह की दी हुई पावर से। दे रिप्रेजेंट द पावर ऑफ अल्लाह। हमें अल्लाह की ताकतें अल्लाह के बंदों से नजर आती हैं। ना तो अल्लाह को हमने देखा है, ना उसकी सिफात को देखा है, लेकिन मानते हैं तो अल्लाह के नबियों और वलियों के जरिए से मानते हैं, उनकी वजह से मानते हैं कि अल्लाह की सिफात का जहूर इन लोगों से होता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो काम करते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनते हैं, मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखते हैं, मैं उनके पांव बन जाता हूँ जिनसे वो चलते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या अल्लाह ताला किसी के पांव का हिस्सा बन जाएगा? क्या वो किसी के हाथ का हिस्सा बन जाएगा? He is free from that. इसका मतलब ये है कि अल्लाह की ताकतें उनके हाथों से, उनकी आंखों से, उनके कानों से, उनके चलने से जाहिर होती हैं। और फिर जब वो दुआ करते हैं ना, ये लोग सवाल करते हैं, अरे बगदाद क्यों जाते हो? अरे जनाब अजमेर क्यों जाते हो? इतनी दूर का सफर क्यों करते हो? इतना पैसा लगाते हो? क्या करने जाते हो? हमारे सीधे साधे मुसलमान कहते हैं, हाँ भाई हम वहां दुआ करने जाते हैं। अरे इतनी दूर दुआ करने गए, क्या अल्लाह जोहानिसबर्ग से नहीं सुनता? अब आप परेशान हो गए कि जनाब ये तो बड़ा टाइट सवाल कर दिया, इसका जवाब कहाँ से दे। फिर भागे इमाम साहब के साथ, मुफ्ती साहब के पास, जनाब इसका जवाब दे दो, हम तो बड़ी मोहब्बत से अजमेर भी जाते थे और जनाब हम तो बगदाद जाते थे, लेकिन किसी ने सवाल कायम कर दिया, जवाब नहीं बन पा रहा। ओ भाई जाया करो, बगदाद जाया करो, अजमेर जाया करो, वहां जाके दुआ किया करो, वो बुजुर्ग जिंदा है उनसे अर्ज किया करो, हजूर हमारे लिए दुआ करो। क्यों? अरे ये बड़ा स्मार्ट वे है भीख मांगने का, दिस इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ बेगिंग। यही हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ में है, जिसके बारे में मैंने बताया कि अल्लाह उनके हाथ बन जाता है, उनकी आंखें बन जाता है। इसी का एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ता हूं, उसमें यह है, व इन सअलनी लउतियन्नहु, कि मेरा बंदा मेरा वली जब मुझसे सवाल करता है तो मैं जरूर बर जरूर उसको अता करता हूं। यहां दो तकीदे हैं, दे आर डबल एम्फसिस ऑन दिस वर्ड लाम ल, ये लाम ताकीद कहते हैं इसको, ये ताकीद है लउतियन्नहु, और ये जो नून है उसके ऊपर शद्दा है, इसको कहते हैं नून ताकीद सकीला, ये भी ताकीद है, ये भी एम्फसिस है। तो यहां डबल ताकीदें हैं हमारे बारे में, क्या है तुम दुआ करो मैं दुआ कबूल करने वाला हूं, उनके बारे में क्या है जब मेरा बंदा दुआ करता है मुझसे मांगता है तो मैं जरूर जरूर उसको देता हूं। तो हम दुआ तो करते ही है ना, हर रोज करते हैं, जुमे में नहीं करते क्या दुआ, बड़ी रातों में नहीं करते, जुमे रात को नहीं करते, हर वक्त करते हैं दुआएं, लेकिन कभी कभी हमको मौका मिलता है कि ऐसे बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे कि जिसकी बुजुर्गी मुसल्लम है, डाउट नहीं है किसी को, गौसे आजम की बुजुर्गी पर किसको डाउट है, जो वहां जाना पसंद नहीं करता वो भी उनकी बुजुर्गी को तो मानता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की विलायत पर किसको डाउट है, किसी को नहीं है ना। तो इन माने हुए बुजुर्गों की बारगाह में ये फकीर कभी कभी पहुंचते हैं इस नीयत से कि हजूर आप हमारे लिए दुआ कर दें कि आपकी दुआ पर तो वादे में वादा है, आप जब हमारे लिए दुआ कर देंगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा लेगा। तो दैट इज द रीजन कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कौम भाग भाग के अल्लाह के वलियों के मजार पे हाजिरी देती है। दे डू नॉट गो एंड वर्शिप द ग्रेव्स, दे डू नॉट गो एंड वर्शिप द वली, वो तो उनके तसव्वुर में भी नहीं होता। ऐसे झूठे इल्जाम लगा लगा के मुसलमानों पर तोहमते बांधते हैं लोग कि ये कब्र पुजारी हैं तो ये फलां पुजारी हैं। अरे जाहिल से जाहिल मुसलमान से भी पूछ लो, तुम अल्लाह के वली के मजार पे क्यों जाते हो, वो कहेगा इसलिए जाता हूं कि ये अल्लाह का प्यारा बंदा है। उसने तो उसको अल्लाह का बंदा माना हुआ है, तो जिसको उसने अल्लाह का बंदा माना हुआ है उसकी पूजा कैसे करेगा, उसका वो पुजारी कैसे बनेगा, उसको वो अपना अल्लाह कैसे मानेगा। सो इट इज नॉट इवन पॉसिबल फ्रॉम ए कॉमन सेंस कि ऐसा भी हो सकता हो। हमारे सारे तरीके कुरान और सुन्नत से साबित हैं, कोई भी वहम परस्ती पर हमारा अकीदा नहीं है। इंशाल्लाह आप कोई भी बात लाओ अल्लाह के फजल से कुरान और हदीस से, सही हदीसों से आपको सबूत मिलेगा। तो लिहाजा जिस रस्ते पर हो यही रास्ता सही है। अल्लाह के बंदों से मदद मांगना तो हमारे नबी ने सिखाया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अकेले हो, जंगल में हो, गुम हो जाओ, रास्ता ना पाओ, कोई इंसान भी सामने नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई आसार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि कोई आपको बता सके कि किधर जाना है, रास्ता किस तरफ है, तो उस वक्त क्या करो। ये अल्लाह के नबी हैं जिन्होंने तौहीद सिखाई है, ये अल्लाह के नबी हैं जिन्होंने शिर्क की जड़ें उखाड़ के फेंक दी हैं। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया शोबुल ईमान में, हजरत इमाम बहकी ने इस हदीस को नकल किया है, हजूर ने फरमाया कि जब गुम हो जाओ तो ये कहो
या इबाद अल्लाह अईनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो तौहीद वही सच्ची जो मुस्तफा अता फरमाए, हम तो उसी तौहीद को मानेंगे जो हमारे मुस्तफा ने हमको दी है। और जो तौहीद मुस्तफा ने हमको दी है उस तौहीद के अंदर ये नजरिया मौजूद है कि अल्लाह के बंदों से मदद मांगा करो, क्योंकि अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने अपनी मखलूक की मदद करने के लिए अपॉइंट किया है। तो जिसको अल्लाह अपॉइंट कर ले मदद करने के लिए, तो उससे मदद मांगने में क्या हर्ज है, क्या नुकसान है? तौहीद वही सही है जो मुस्तफा ने दी है, तो लिहाजा हम उस तौहीद को मानने वाले। तो ये अल्लाह के वलियों के साथ जो रिश्ता आप जोड़ोगे ना, तो सही तौहीद भी आएगी, सही तौहीद का माना भी समझ में आएगा, सही मुसलमान बन के जिंदगी जियोगे। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। Ascending success stair.